नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा, ये सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कोन ओह यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। बैठक में खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46,000 से 47,000 टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और सुचारू समुद्री परिचालन के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। ये यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1,000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। महाराष्ट्र में कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग ने दक्षिण कोरिया के शैक्षणिक संस्थानों के साथ आज 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कौशल विकास के क्षेत्र में दक्षिण कोरिया के साथ महाराष्ट्र की साझेदारी से राज्य के युवाओं के लिए वैश्विक अवसर सृजित होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।